महाबंध पुस्तक दुसरी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधम नमामि। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में अभी जो अपना द्वितीय स्थिति बंधाधिकार चल रहा है, उसको देखते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए। 27 स्थिति बंध में जब अभी हम ये जो बात देख रहे हैं, अद्धा छेद का प्रकरण चल रहा है और उसमें हम आदेश से बात देख रहे हैं। पहले हमने उत्कृष्ट स्थिति बंध देखा था, अभी जघन्य स्थिति बंध देख रहे हैं। नारकियों में हमने बात देखी है और वैसे ही जिसमें जिसमें पाया जाता है उसकी भी बात देखी। तिर्यंचों की अपनी बात चल रही थी, तिर्यंच गति में भी हमने देख लिया, फिर द्विंद्रियादि में देखा। अब यहाँ 27 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ वहां से देखेंगे। देखो तिर्यंचों में हमने क्या देखी थी कि तिर्यंचों में अगर जघन्य स्थिति बंध किसको होता है, तिर्यंच इतना ही कहा तो किसमें होगा, एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में भी हमने देखा था बादर में होता है, बादर में भी पर्याप्त में होता है, वो तो बात हमने देखी थी। तिर्यंच इन जनरल कहेंगे तो एक इंद्रियों में मिनिमम होता है। उसमें अगर भेद करना है तो फिर एक इंद्रिय के जो है मिनिमम उसमें बताएंगे, द्विंद्रियादि में जिसको जिसको जितना मिनिमम होता है, हाँ तो कितना होता है तो द्विंद्रिय में 25 सागर में पल्ले का संख्या का भाग कम, फिर उसके 3/7, 7/7 और 2/7 भाग करेंगे। इंद्रिय में 50 सागर में कम करेंगे, चतुरिंद्रिय में 100 सागर में कम करेंगे। आयु कर्म तो ओग के समान है, क्षुद्र भव का बंध कर सकते हैं, तो मिनिमम स्थिति बंध उतना है और मिनिमम आधा आबादा भी अंतर्मुक्त करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ, 35 नंबर का पॉइंट, स्त्री वेदी और नपुसक वेदी जीवों के ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का जघन्य स्थिति बंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है। देखो स्त्री वेदी और नपुसक वेदी जीवों का स्थिति बंध कहा और वो कितना कहा, संख्यात 1000 वर्ष। क्यों? जब स्त्री वेद का उदय कहाँ है तो स्त्री वेदी के जघन्य कहाँ होगा, तो स्त्री वेद का जहां तक उदय है वहां उसका जो स्थिति बंध है, कौन से कर्म का, वहां जो जो बंध रहे वो सब, तो वहां ज्ञानावरण आदि सब बंध रहे हैं, तो उनका कितना है तो संख्या 1000 वर्ष प्रमाण। देखो कल हमने अपगत वेदी की बात देखी थी, अपगत वेदी में उत्कृष्ट देखा था उसको देखना, जघन्य तो बाद में होगा। अपगत वेदी में जो उत्कृष्ट देखा था, देखो 22 पेज पर संख्या 1000 वर्ष प्रमाण, यानी ये स्त्री वेद का अंतिम समय, वहां जितना स्थिति बंध है उसमें एक अंतर्मुहूर्त कम नेक्स्ट समय में होगा, क्यों, वहां नया स्थिति बंध चालू हो जाएगा अपगत वेद होने पर। तो वहां उसका उत्कृष्ट था अपगत वेद होने के पहले समय में, और यहां सवेद का अंतिम समय, सवेद के अंतिम समय में वेद वाले जीवों का जघन्य होगा और अपगत वेदी वाले उत्कृष्ट है उसके पहले समय में होगा। तो कितना है तो संख्या 1000 वर्ष। کس میں؟ ابھی ابھی جگنے میں چڑھتے سمے لینا پڑے گا. اتکرشٹ میں ہم نے اترتے سمے لیا تھا. ہاں یہاں جگنے بند کی بات کرتے ہیں تو کشپک شرینی میں دیکھنا پڑے گا, اور وہ بھی کشپک تو چڑھتے سمے ہوتی ہے. تو سنکھیات ہزار ورش پرمان انترمورت پرمان آبادہ ہوتی ہے, اور آبادہ سے نیون کرمستھتی پرمان کرم نشیک ہوتا ہے. वेदनीय एक किसकी बात हुई? ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय की. वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का जघन्य स्थिति बंधक पल्य का असंख्यात व भाग प्रमाण होता है. देखो नाम और गोत्र का जितना होगा उससे वेदनीय का डेढ़ गुना हो जाएगा. यानी पहले तो चार का समान था, ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय और वेदनीय. अभी वो ज्ञानावरण अधिक का कम हुआ है, नाम गोत्र का ज्यादा रह गया. उल्टा पुलटा होता है ना बाद में. आपके क्या कारण नाम उसका अशोकर में इसके लिए नहीं लगता है, वो मात्र संज्वलन क्रोधमान माय लोग में लगता है. ये क्रमकरण कहेंगे इसको, उसको क्रम उल्टा पुलटा हो जाता है ना. यहाँ पर अंतर्मूर्त आबाधा होती है, और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है. यहाँ होता है लिखा है हर जगह. मोहनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध संख्यात 100 वर्ष प्रमाण होता है. यानी हजार से भी कुछ कम हो जाए संख्यात 100. अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, यानी मोहनीय का स्थिति बंध सबसे कम हुआ है, फिर ज्ञानावरणादि का, फिर नामगोत्र का, फिर वेदनीय का, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है. आयु कर्म का विचार ओह के समान है. जब आयु कर्म की जघन्य देखनी है तो वो ऊपर के गुणस्थान में मत देखना. पंचेंद्रिय स्त्री और नपुसक, अभी नपुसक वेदी तो एक इंद्रिय भी हो सकता है, वो क्षुद्र भोग का बंध करेंगे तब उन्होंने जघन्य आयु बांधी. और आवारा भी जघन्य अंतर्मूर्त हो सकती है. अन्य कर्मों में जघन्य बंध कब होता है? जहां विशुद्धि मैक्सिमम है. आयु कर्म का जघन्य बंध जो हम मार्गणा देख रहे हैं उसमें वो क्या, वो क्षुद्र भोग बांध सकते हैं, अपर्याप्त वाली आयु बांध सकते हैं, तो बांध सकते हैं तो वो लेना. यहाँ जैसे सम्यक दृष्टि की मार्गणा होगी कोई, वहां तो नहीं बांध सकते क्षुद्र भोग, तो वह पर्याप्त जो अंतर्मूर्त प्रमाण यथा योग्य जिसकी जिस मार्गणा की बात चल रही वहां उसकी बात करेंगे. पुरुष वेद वाले जीवों के, स्त्री और नपुसक वेद वाले जीवों को अलग निकाला. पुरुष वेद वाले जीवों के 6 कर्मों का जघन्य स्थिति बंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है. अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है. एक क्या डिफरेंस हुआ ऊपर, क्या है ज्ञान और निर्षण अंतराय का संख्यात 1000 कहा था, और बाकी जो है अन्य 3 का पल्ले का असंख्यात अभाव का. अब नपुसक वेदी और स्त्री वेद का जो उदय है उसके बाद अंतर्मूर्त तक पुरुष वेद का उदय चलता है. उतने काल में इतना स्थिति बंधापसन हुआ कि वो पल्ले के असंख्यात विभाग से कम होकर संख्यात 1000 वर्ष तक आ गया. नाम सॉरी मोहनीय, मोहनीय की छोटी है ना, उसका स्थिति बंध और कम होगा. देखो पुरुष वेद का अंतिम समय में पुरुष वेद का बंध कितना होता है? 8 वर्ष. पुरुष वेद का पूछा मैंने, वेदनीय का नहीं. वेदनीय का जो है या नाम गोत्र का है वो बात है, वो 10वें के अंत में. यानी मोहनीय का स्थिति बंध वहां कुछ वर्ष प्रमाण रहता है ना, वहां तो संख्या 100 वर्ष था. स्त्री वेदी और नपुसक वेदी के लिए जघन्य स्थिति बंध मोहनीय का संख्यात 100 वर्ष प्रमाण था. अन्य कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का संख्यात 1000 वर्ष था. वेदिनी नाम गोत्र का पल्ले का संख्यात था. अब पुरुष वेदी की बात है, क्योंकि पुरुष वेदी और अंतर्मूर्त तक उसका उदय चलता है, पुरुष वेद सही चढ़ने वाले की। उतने काल में हजारों बार वो स्थिति बंधापसरण होता है, हजारों ने कोड़ापड़ी बार भी कहेंगे तो होते होते अभी कितना रह जाएगा। अभी छहों का संख्या हजार वर्ष का, उसका भी जो शुरू में जो संख्या हजार वर्ष का उससे भी घटता हुआ है, फिर भी कहने के लिए संख्या हजार कहेंगे। देखिए 80,000 भी संख्या हजार है और 10,000 भी संख्या हजार, 5,000 भी कहेंगे तो संख्या हजार कहेंगे, तो उसका प्रपोर्शन अलग अलग होगा। परंतु वो पल्ले के असंख्यात विभाग था, वो घटकर अभी नाम गोत्र वेदिनी का भी संख्या हजार वर्ष हो गया। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, ये मिला ना, ये जो 35 नंबर का पैराग्राफ है 27 पृष्ठ पर, उसमें नीचे से पांचवी लाइन में भी हम आ गए। छठी में तो हमने देखा अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है। मोहनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध कितना कहा, 16 वर्ष प्रमाण होता है। यह भी सवेद है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है। आयु कर्म का विचार ओघ के समान है, क्योंकि पुरुष वेद वाले वो तो बाकी भी है ना, मिथ्या दृष्टि भी है, और वो अपर्याप्त की आयु बांधेंगे तो आयु का जगन ने कहलाएगा बंधन। कौन सा है, क्षुद्र भव, क्षुल्ल भव कहा यहाँ पर उसको। अथवा ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म का जघन्य स्थिति बंध संख्यात 100 वर्ष प्रमाण होता है। देखो पहले उसको संख्यात हजार कहा था, इसको उसको संख्यात 100 कहा। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है। ये दो मान्यता विशेषार्थ। तीन वेद वाले जीवों के सात कर्मों का यह जघन्य स्थिति बंध क्षपक श्रेणी में प्राप्त होता है। और आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में प्राप्त होता है। डिफरेंस ख्याल में है ना, क्योंकि ओग के समान क्षुल्लक भव प्रमाण जघन्य स्थिति बंध वहीं पर संभव है, यानी एक मिथ्या दृष्टि के जीव के ही वो अपर्याप्त नाम कर्म बनता है, बाकी तो बाद में बनता ही नहीं है। अन्यत्र आयु कर्म का इतना कम स्थितिबंध नहीं होगा, ऊपर के गुणस्थान में कम से कम अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पर्याप्त की आयु बांधते हैं। यहाँ पुरुष में वेद में अथवा कहकर विकल्पांतर की सूचना की है। विकल्पांतर यानी अन्य विकल्प, अन्य विकल्प यानी अन्य जो उपदेश है उसको बताया। सो विचार कर इस कथन का सामंजस्य बिठला लेना चाहिए। दूसरे विकल्प द्वारा इसी बात की सूचना की है, यानी वो जो संख्या हजार है ज्ञानावरण आदि का, वो भी घटते घटते संख्या 100 रह गया। नाम गोत्र वेदनीय का पल्ले के असंख्यात विभाग था, वो घटते घटते यहाँ पर संख्या हजार हो गया। इसी से पुरुष वेद में वेदनीय नाम और गोत्र का जघन्य स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण, तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का जघन्य स्थितिबंध संख्यात 100 वर्ष प्रमाण कहा है। यानी वही पहले जब हमने स्त्रीवेद नपुंसक वेद में मोहनीय का संख्यात 100 था, और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का संख्यात हजार था। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय नाम गोत्र का पल्ले का संख्यात था, तो पुरुष वेद और अंतर्मूर्त जाकर उसका वेद वहां तक चलता है, तो उसमें वो संख्या हजार से घटकर ज्ञानावरण आदि का संख्या 100 हो गया। मोहनीय का संख्या 100 था, वो घटकर 16 वर्ष प्रमाण होता। क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों के छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध संख्या हजार वर्ष प्रमाण होता है। एक क्रोध वाले जीव के जघन्य स्थिति बंध कब होगा, मंजू बेन आप कहेंगे, क्रोध वालों का जघन्य स्थिति बंध, हाँ क्रोध का जो अंतिम समय में बंद हो रहा है क्रोध के उदय के अंतिम समय में किसका बंधन कह रहे? छह कर्मों की बात है, यानी केवल क्रोध का नहीं कहना है। क्रोध का तो वहां पर क्रोध मान माया लोग, क्रोध के अंत समय में तो दो महीना हो जाएगा। क्रोध का उदय का अंतिम समय है, वहां जो किसका बंद हो रहा है? क्रोध मान माया लोग का। तो कितने का होता है वहां पर? कितना होता है? तो दो महीने का होता है। परंतु वहां अन्य कर्मों का कितना हो रहा है? तो संख्या तजा वर्ष। अभी उसमें जो प्रपोर्शन है ज्ञानावरण नाम गोत्र में, वो तो रहेगा ही रहेगा। देखो फिर पढ़ेंगे इसको। क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों के तीन कह लिया है, छह, क्योंकि ये जो है नौवे गुणस्थान के दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में इनका उदय रुकता है और वहां का स्थिति बंध बताया है। और लोभ का उदय दसवें के अंत तक चलता है, इसलिए दसवें के अंत में जो स्थिति बंध होगा उसको कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण आदि का अंतर मुहूर्त है, वेदनी का जो बारह मुहूर्त है, नामगोत्र का आठ मुहूर्त है, वो बात वहां चलेंगे। वो लोभ में अलग बात है, इसलिए उसको नहीं लिया। देखो क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों के छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध, संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। नितिन भाई छह कर्म कौन कौन से है? आयु और मौनी छोड़कर छह कर्म हमने देखे ना, ज्ञानावरण दशना अंतरा इनका एक ग्रुप, नाम गोत्र का दूसरा ग्रुप, और वेदनीय एक तीसरा, उनके इसी क्रम से वो अधिक अधिक बंद है। पहले जब हमने स्टार्ट मिथ्यात्व अवस्था में, ये तो बीसीए वाले थे और वो बाकी तीसीए वाले थे, वो क्रम अब नहीं रहा है श्रेणी में। अब मोहनी कर्म का बता रहे, यहाँ आयु कर्म का बंद होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्रोध के अंत में यहाँ नहीं हो रहा। अरे क्रोधी जो तो होगा ही, नहीं तो कहाँ जाएगा बेचारा। तो क्रोध मान माया लोग वालों के जो कहेंगे तो क्षुद्र भोग, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ही क्रोध वाले, यहाँ पर उसका बंधन नहीं है। इसलिए ये छह और ये मोहनीय सात ही कर्मों की बात की यहाँ पर इस पॉइंट पर, और जो आयु कर्म की बात करेंगे तो मिथ्या तो गुणस्थान में कहेंगे। मोहनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध क्रोध कषाय वाले के दो महीना, क्रोध कषाय वाले के दो महीना, तो दो महीना जो क्रोध कषाय वाले को बंद हो रहा है वो मोहनी में से कौन से प्रकृतियों का हो रहा है आपको पता है? मोहनी में कौन सी प्रकृतियां बंध रही है जब क्रोध का उदय का अंतिम समय है? हाँ मंजू बहन, क्रोध को कहाँ छोड़ा? क्रोध मान यहाँ पर चार संज्वलन का दो महीना। अब आगे चलकर मान कषाय वाले के एक महीना, क्योंकि जब मान कषाय वाले के मोहनीय का एक महीना कहते हैं तब मान माया और लोभ बन रहा है तीनों, क्योंकि तीनों की स्थिति समान बनती है। माया कषाय वाले के एक पक्ष यानी पंद्रह दिन, माया का अंतिम समय है तो वहां पंद्रह दिन कौन से बन रहे? माया और लोभ, संगलन माया और लोभ। सब कर्मों की अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होता है। आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध ओघ के समान है, वो मिथ्या तो गुणस्थान में क्षुल्लक भोग प्रमाण। अथवा क्रोध कषाय वाले के सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध पुरुष वेद वाले के समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध दो महीना, अथवा कहकर उन्होंने ज्ञानावरण जो तीन की संख्या सौ कहा था और बाकी की संख्या हजार कहा था। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। मान कषाय वाले के तीन कर्मों का जघन्य स्थिति बंद वर्ष पृथक प्रमाण है, ये अथवा कहकर बात हो रही है। नहीं नहीं, मान कषाय वाले के तीन कर्मों की बात है, तीन यानी ज्ञान और दर्शन अंतराय, ऊपर संख्या हजार वर्ष छह का बताया था, अब अथवा कहकर वो खास स्पेसिफिकली बता रहे। उसमें क्या बताया, पहले में पहले उन्होंने क्रोध वाले के अन्य कर्मों का स्थितिबंध, इसमें मोहनीय का दो महीना है और अन्य कर्मों का, हाँ पुरुष वेद वाले के समान है, पुरेणी संख्या सौ और नाम गोत्र वेदनीय का संख्या हजार। नहीं, अथवा ज्ञान दर्शन अंतराय को सभी का कैसे ले लेंगे, बाकी तो अभी संख्या हजार तक है ना, क्योंकि वो ज्ञानावरणादि जो संख्या हजार थे वो संख्या सौ हो गए थे, अब यहाँ पर वो भी घटकर और थोड़े कम हो जाएंगे, संख्या सौ वो भी और कम हो, मान लेते पहले 900 हो गए तो अभी 400 हो जाएंगे, वो संख्या सौ ही रहेंगे, तो ये अथवा कहकर यहाँ पर भी उसको संख्या सौ कह दिया। देखो हम फिर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अथवा की बात कहाँ गई, आयु कर्म के आगे अथवा, अथवा कहकर अभी हम सातवीं लाइन में आ गए। क्रोध कषाय वाले के सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध पुरुष वेद वाले के समान है, वहां क्या लिखा था, ज्ञान में वो तत्वा कहकर संख्या सौ तीन के लिए बताया था, बाकी संख्या हजार कहा था, और पुरुष वेद वाले के मोहनीय का कितना बताया था, 16 वर्ष कहा था ना, अब यहाँ कहते हैं मोहनीय का कितना है, हाँ 2 महीना, क्योंकि वो गड़ गए और आगे पुरुष वेद वाले के जो था उसमें अंतर्मूर्त आगे जाके क्रोध कषाय का उदय मिटेगा, उस एक अंतर्मूर्त में हजारों अंतर्मूर्त पास हो जाएंगे और हर बार स्थितिबंध घटता चला जाएगा। 16 वर्ष प्रमाण पुरुष वेद के अंत समय में था, वो घटकर अभी क्रोध के अंत समय में 2 महीना रह जाएगा मोहनीय, और उसी समय जहां मोहनीय का 2 महीना है ज्ञानावन्वेषण अंतराय का संख्या 100 होगा, वो भी घटा हुआ संख्या 100 है। पुरुष वेद के समान जब कहते हैं तो उसका अर्थ है संख्या 100 ये कथन समान है, बंद उतने समान है ऐसा नहीं लेना उसमें, वो संख्या 100 का भी प्रमाण कम हुआ है यहाँ पर। अब मान कषाय वाले के हमने ऊपर मान कषाय में मोहनीय का तो देखा ही था 1 महीना है, तीन कर्मों का जघन्य स्थितिबंध वर्ष पृथक प्रमाण, कुछ वर्ष संख्या सौ से घटकर अभी कुछ वर्ष तक आ गए। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का जघन्य स्थितिबंध संख्या सौ, ये अभी संख्या सौ पर आ गए। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है, मोहनीय कर्म का जघन्य स्थितिबंध 1 महीना है, ये हमने मान के अंत समय में देखा। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। अब माया कषाय वाले के तीन कर्म का जघन्य स्थितिबंध मास पृथक प्रमाण है, वर्ष पृथत्व से मास पृथक तक आ गया, क्रोध कषाय के अंत समय में संख्या हजार वर्ष था, मान के अंत समय में वर्ष पृथक हुआ और अभी मास पृथक हुआ। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का जघन्य स्थिति बंध वर्ष पृथक, यहाँ ये भी वर्ष पृथक तक आ गए और वो मास पृथक तक चले गए ज्ञानावरणादि। अंतर्मूत प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है, मोहनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध पक्ष प्रमाण है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो समान ही है दोनों के लिए, अंतर मूल प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म से के प्रमाण कर्म निषेध। उक्त तीन कषाय वाले जीवों के सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध क्षपक श्रेणी में और आयु कर्म का मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है। यहाँ भी विकल्पांतर के संबंध में वही बात जाननी चाहिए जिसका निर्देश पुरुष वेद के समय कराए। ये ख्याल में आती है बात। वहाँ एक तो सामान्य से कथन सबको संख्या 1000 वर्ष का, इसमें जो खास वेरिएशन होते हैं उसको सबको बताया, अधिक सूक्ष्म बात। देखो पहले तो हमने गति के बाद हम डायरेक्ट वेद मार्गणा हमने ली थी, उसके बाद कषाय मार्गणा की बात की। रवि संयतों की बात कर रहे क्यों, वैक्रेक वगैरह की बात हुई थी ना, भूल गए क्या? जो बात ओघ में घटित होती है, ओघ में जघन्य स्थिति बंध कैसा घटित होता है श्रेणी में, और वो भी क्षपक श्रेणी में। तो जिस जिस मार्गणा में क्षपक श्रेणी होती है उन मार्गणाओं का विचार पहले ही कराए, तो उसमें हमने तीन प्रकार के मनुष्य भी देखे थे। गति में मनुष्य गति को भी लिया था, गति मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में पंच इंद्रिय की बात की, काय मार्गणा में त्रस की बात की, योग मार्गणा में पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी में बात घटित की थी। जिसमें वेरिएशन है उसकी बात उन्होंने बाद में की थी, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र की बात बाद में की। तो योग मार्गणा भी हुई थी और उसके बाद यह स्त्रीवेदी की बात उठा रही। ख्याल में है ना बात, जहां डिफरेंस है ऐसे नरक गति तिरंज गति की बात बता चुके देवगति के वगैरह, यानी नरक गति भी वहीं पर देवगति का ऐसे ही है ऐसा वही कथन किया था। उसके बाद वेद मार्गणा हुई, अभी कषाय मार्गणा हुई। ज्ञान मार्गणा में तो जो हमने अभिनिबोधिक वो उसकी उस ज्ञान वालों की भी बात देखी थी ना पहले, क्योंकि श्रेणी वो चढ़ेंगे तो वो भी बात उनमें घटित होगी। मतिश्रुता अवधि मनपरि ज्ञानियों में वो तो वो बात घटित होगी। हाँ उसमें कोई आयु की बात वो घटित नहीं होगी, जहां जो घटित होती है उसकी बात उन्होंने बताई थी, आयु में क्या विशेषता है उसकी भी बात होगी। सम्य दृष्टियों में जो आयु बंध में जो विशेषता है वो जघन्य में जघन्य कितनी बांध सकते हैं वो तो लेशा के अनुसार भी उन्होंने बताई थी। ये अपना विषय हो चुका है। अब यहाँ हम 29 पेज पर आ गए हैं। सामायिक और छेदों को स्थापना शुद्धि संयत जीवों के तीन कर्मों का जघन्य स्थिति बंध मुहूर्त पृथक्त्व प्रमाण है, क्योंकि ये सामायिक छेदों पर स्थापना का जघन्य स्थिति बंध कहाँ होगा? नितिन भाई आप कह सकते हैं? हाँ मंजू, नवे गुणस्थान में कब? हाँ तो कब होगा उसका जघन्य, कब होगा? एन में। हाँ बराबर है ना, वो भी क्षपक के होगा क्योंकि वहां शुद्धि ज्यादा है ना उसकी, ये शुद्धि ज्यादा है वहां पर। तो तीन कर्मों में किसको लिया? ज्ञान दर्शन अंतराय का। कितना है? मुहूर्त पृथक्त्व। अंतर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधा से नहीं उन कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेध है। वेदिनीय नाम गोत्र कर्म का जघन्य स्थिति बंध मास पृथक्त्व है। ये नवे के अंत की बात चल रही है। अंतर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेध है। मौनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध आबाधा और निषेक रचना ओग के समान है। कितना है? हाँ मंजू, मौनी का जघन्य स्थिति बंध कितना होगा? पक्ष, पक्ष माया में आया। लोभ का अंतिम समय में होगा, नौवे के अंत में, दसवें में तो बंद नहीं होता है। तो एक अंतर्मूर्त हमने ओग में मोहनीय का अंतर्मूर्त जघन्य स्थिति बंद देखा। ओग के समाने ने एक अंतर्मुख आयु कर्म का जगन्य स्थितिबंध पल्य पृथक प्रमाण है। अभी सामायिक छेदोपस्थापना वाले है, यानी संयत है, निराज है, तो कम से कम आयु कितनी बांधेंगे? पल्य पृथक पृथक पल्य जिसको कहें, कुछ पल्य। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। सूक्ष्म सांप्राय संयत के छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध आबाधा और निषेक रचना ओग के समान है। बोलो अश्विन भाई, छह कर्मों के आप बताना। ज्ञानावरण दर्शन अंतराय का अंतर्मुहूर्त है, नाम और गोत्र का आठ मुहूर्त है, वेदनीय का बारह मुहूर्त। मुनि का सवाल नहीं, आयु का सवाल नहीं यहाँ पर। विशेषार्थ, उक्त दोनों संयम छठवें गुणस्थान से लेकर नौवे गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए शपक शनि के नौवे गुणस्थान में जहाँ जिस कर्म का जघन्य स्थिति बंध होता है वहाँ इनमें जघन्य स्थिति बंध जानना चाहिए। आयु कर्म का पल्यपम पृथक प्रमाण जघन्य स्थिति बंध प्रमत्त संयत के संकलेश परिणामों की प्रचुरता के होने पर होता है। गुणस्थान नहीं छूटा है, नहीं तो वो संयम नहीं कहलाएंगे उनको। उनके क्या कह रहे आप? हाँ, संकलेश वाले जीव हाँ, आपका कहना पांचवे के सन्मुख, तो मिथ्या तो के सन्मुख कराओ तो ज्यादा संकलेश हो जाएगा। वो क्यों होता है, किसके होता है, वो तो स्वामित्व में आएगी बात। जघन्य बंध की बात, ओग से छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध आदि क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ही प्राप्त होता है, क्योंकि क्षपक के विशुद्धि ज्यादा है। इसी से सूक्ष्म सांप्राय संयत के छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध आदि ओग के समान कहा है। इन जनरल भी जघन्य स्थिति बंध इन्हीं के होता है, ये छह का। उपशम समय दृष्टि जीवों के, ये तो संयम मार्गणा की बात हो गई ऊपर। तत्प्रायोगे वो तो ये किसके वो स्वामित्व में नहीं लिया, यथा योग्य जो कोई संकलेश संकलेश परिणाम उसको यानी डिफाइन करने की जरूरत नहीं हमें, उनके यथा योग्य संकलेश परिणाम में। उपशम समय दृष्टि जीवों, देखो संयम मार्गणा में असंयम में तो हमने देखा था, फिर संयम असंयम की बात हुई थी, अब यहाँ उपशम समय दृष्टि सम्यक तो मार्गणा की बात कर रहे हैं। उपशम समय दृष्टि जीवों के चार कर्मों का जघन्य स्थिति बंध दो अंतर्मूर्त प्रमाण है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। यानी दो अंतर्मूर्त कहने का प्रयोजन क्या है? जहां दसवें क्षपक के दसवें गुणस्थान में जितना बंध होता है उससे डबल होगा वहां पर। तो मेरा प्रश्न है चार कर्म कौन से ये? आप ही पूछने वाले तो आप ही बताओ। चलो हाँ बोलो, नितिन भाई बोल रहे हैं। वेदनीय का जघन्य स्थिति बंध क्षपक के कितना था, और जिसको हमने आठ और बारह मुहूर्त कहा है तो वो अंतर्मुहूर्त कैसे हो सकता है? तो उसको छोड़ो ना,
धरती पर यह विचार कर लो तो कौन से है, नाम गोत्र और
मुनि?
मुनि एक ही होगा ना, तो तीन हो गए, तो चौथा कौन सा?
ज्ञानावरण दर्शन और अंतरार मुनि जहाँ वो दसवें में, सब दसवें में नहीं लगाना, मुनि का जहाँ होता होगा वहाँ उसको लगाना। तो मुनि का जगन्य हमने देखा था नवे के अंत में, अंतर्मूर्त प्रमाण शपक श्रेणी में देखा। तो यहाँ दो अंतर्मूर्त है, उस अंतर्मूर्त से दो गुणा उपशम श्रेणी वाले के नवे गुण स्थान के अंत में होगा। ज्ञाना दर्शन अंतराय का दसवें के अंत में होगा, वो दसवें में क्षपक में जितना होता उससे डबल है। यानी चार कर्मों में किसको लिया? मोहनीय तो नवे के अंत में, और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय दसवें के अंत में। इसलिए उसको दो मुहूर्त कहा, दो अंतर्मूर्त का, मुहूर्त भी नहीं, दो अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा और आबाधा से ही, कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। वेदनीय का जगन्य स्थिति बंध 24 मुहूर्त है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा और आबाधा से ही, कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। नाम और गोत्र का जगन्य स्थिति बंध 16 मुहूर्त है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा और आबाधा से न्यून, कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। आयु को क्यों छोड़ा? उपशम श्रेणी में नहीं, उपशम सम्यक की बात चल रही है। नहीं होता उपशम समय दृष्टि जीव के आयु का बंधन नहीं होता। विशेषण, उपशम सम्यक दृष्टि के यह जगन्य स्थिति बंध उपशम श्रेणी में प्राप्त होता है, जो क्षपक श्रेणी में प्राप्त हुए जघन्य स्थिति बंध से दूना होता है। इस प्रकार जघन्य अध्याच्छेद समाप्त हुआ। यानी यहाँ आयु का बंध नहीं होता, ये बात पहले भी बता चुके थे। यानी नीचे के गुणस्थानों में भी द्वितीय उपशम लौटकर आएगा चौथे पाश्चर्य में, वहां भी आयु का बंधन नहीं है। इस प्रकार जघन्य अध्याच्छेद समाप्त हुआ। इस प्रकार अध्याच्छेद समाप्त हुआ, ये 24 अनुयोग द्वार बता रहे। उसमें से पहला अनुयोग द्वार अध्याच्छेद है, उसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध का प्रमाण हमने देखा, वो में भी और आदेश में। अध्याच्छेद का अर्थ है जो कर्म स्थिति बंधी है, उसमें जो अंतिम निषेक की जो स्थिति है उसको यहाँ अध्याच्छेद, उसी को हम स्थिति बंध कहेंगे। इतना स्थिति बंध हुआ, जो अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, आबाधा के आबाधा प्लस एक समय, आबाधा प्लस दो समय से लेकर सबके अलग अलग परमाणुओं की स्थिति अलग अलग बनती है। निमित्त से कार्य होता तो सब में समान बंधनी चाहिए। हम तो कहेंगे इतनी बंधी, जब कोई 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति बांध रहा है तो क्या सभी परमाणुओं में उतनी स्थिति पड़ती है? कोई परमाणु तो 7000 वर्ष प्लस एक समय इतनी स्थिति पड़ी उसमें, बनते समय की बात। बाद में वो घटेगी अपकर्षण द्वारा, वो बात अलग। अब आगे चलते हैं हम, दो नंबर का है सर्वबंध और तीन नंबर नो सर्वबंध। देखो ये हमने जो 24 संयोग द्वार देखे थे, पेज नंबर 16 पर देखे थे, वहां पर सर्वबंध और नो सर्वबंध को दो और तीन नंबर दिए थे हम। तो हम यहाँ दो और तीन नंबर की बात करेंगे। तो सर्वबंध नो सर्वबंध प्ररूपणा, जो सर्वबंध और नो सर्वबंध है उसका यह निर्देश है। यानी उसका क्या कथन है वो भी बताने जा रहे हैं। ओग निर्देश और आदेश निर्देश, ओग की अपेक्षा कथन और आदेश की अपेक्षा मार्ग नौ में कथन। इनमें से ओग की अपेक्षा ज्ञानावरण चाहिए, ज्ञानवारण हुआ है, ज्ञानावरणीय के न का ना करना और वा का वो करना। ज्ञानावरणीय के स्थिति बंध का क्या सर्वबंध होता है या नो सर्वबंध होता है, ये प्रश्न पूछा और उसका उत्तर यहाँ देंगे। तो कहते सर्वबंध भी होता है और नो सर्वबंध भी होता है, यानी जो सभी स्थितियां बंधेगी, यानी जब मैक्सिमम स्थिति बंध होता है तो सभी स्थितियां बंधेगी तो कहेंगे सर्वबंधी, सभी स्थितियां बंधी यानी सभी निषेक तैयार हुए। हाँ, 3000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक के सभी निषेक बंधे, सभी स्थितियां बंधी, तो उसको कहेंगे सर्वबंध, स्थिति बंध संबंधी सर्वबंध। नो सर्वणी सभी नहीं बंधेगी, कम बंधेगी, ये जरूरी नहीं कि हर बार उतनी बंधेगी। तो कहते सर्वबंध भी होता है नो सर्वबंध भी होता है, सब स्थितियों को बांधता है इसलिए सर्वबंध होता है, उससे न्यून स्थितियों को बांधता है इसलिए नो सर्वबंध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी प्रत्येक मार्गणा में उस मार्गणा में जो जो हमने सर्वबंध देखे थे वो भी हो सकते हैं, नो सर्वबंध भी हो सकते हैं। विशेषार्थ, यहाँ ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों के स्थितिबंध का सर्वबंध भी होता है और नो सर्वबंध भी होता है। आठों कर्म तो सब स्थितियों का बंध होता है तब सर्वबंध होता है, अन्यथा नो सर्वबंध। ये सब स्थितियां नहीं बंधेगी तुम कहीं नो सर्वबंध हुआ। उदाहरणार्थ ओग से ज्ञानावरण की सब स्थितियां 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। सब स्थितियां यानी उनका वो कितनी ऊपर पड़ी है तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर ऊपर, तो वो सब स्थितियां होंगी। 3000 वर्ष प्लस एक समय वाली उस स्थिति को कहेंगे 3000 वर्ष प्लस एक समय वाली स्थिति, तो सभी स्थितियां होगी इसमें। जब इन सब स्थितियों का बंध होता है तब सर्वबंध कहलाता है, जब इससे न्यून बंध होता है तब नो सर्वबंध कहलाता है। इसी प्रकार अन्य सात कर्मों की अलग अलग सब स्थितियों का विचार कर सर्वबंध और नो सर्वबंध का कथन करना चाहिए, यानी जहां जिसकी उत्कृष्ट स्थिति बंध कहा आधा छेद वो सब बनती है तो कहेंगे सर्वबंध, उससे कम बनती है तो कहेंगे नो सर्वबंध। हाँ, वो भी अपेक्षा मिथ्या तो नहीं होगा, वो भी संगी पंचेंद्रिय के होगा, वो भी पर्याप्त के होगा, वो भी संकलेश परिणाम वालों के होगा। मार्गणाओं में उस मार्गणा का उत्कृष्ट कहलाएगा। समय दृष्टि के तो अंत कोड़ाकोड़ी होता है तो उसका वो सर्वबंध कहलाएगा, उसके लिए 70 कोड़ाकोड़ी को सर्वबंध नहीं कहेंगे। हम देखा है ना पहले अध्याचे, उसी की अपेक्षा यहाँ बात करनी है। तो कहते हैं कि मार्गणाओं में विचार करते समय, ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा शायद, जिन मार्गणाओं में यह ओह प्ररूपणा घटित हो जाए वहां ओग के समान जानना चाहिए, जिन जिन मार्गणाओं में वो मिथ्या तो गुणस्थान इंक्लूडेड है और जिसमें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव इंक्लूडेड है उन मार्गणाओं में ये उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा तब कहेंगे ये सर्वबंध हुआ, और जिन मार्गणाओं में ओग प्ररूपणा घटित न हो वहां आगे से जहां जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यान में रखकर सर्वबंध और नो सर्वबंध का विचार करना चाहिए। उदाहरणार्थ चारों गति पंचेंद्रिय जाति त्रसकाय तीन योग तीन वेद चार कषाय मत्य ज्ञान यानी मत्य अज्ञान श्रुत अज्ञान विभंग ज्ञान असंयत चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन कृष्णादि तीन लेशा भव्य अभव्य मिथ्यात्व यानी वो ज्ञान सम्यक तो मार्गना की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि कहते हैं मिथ्यात्व भी कहना पड़ेगा। संगी और आहारक इन मार्गणाओं में भोग के समान सर्वबंध और नो सर्वबंध होता है, क्योंकि ये सभी मार्गणा ऐसी है उसमें संगी पंचनीय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उनके उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तब उसको सर्वबंध कहेंगे। उन्हीं जीवों को ये जरूरी है कि पूरा का पूरा बंध हो जाए, उतनी उत्कृष्ट संकलेश के साथ कुछ कम स्थिति भी बंद हो सकती है। कहाँ तक कम हो सकती है? पहले की असंख्या तो भाग प्रमाण रेंज है, कुछ भी बन सकती है, तो उसको नौ सर्व कहेंगे। परिणाम उत्कृष्ट संकलेश होते हुए भी स्थिति बंद के वेरिएशन हो सकते हैं, या परिणाम कुछ और थोड़े ज्यादा संकलेश नहीं हुए तो कम स्थिति ही बांधी उन्होंने, तब भी कहेंगे नौ सर्व बंध। तथा शेष मार्गणाओं में आदेश से सर्वबंध और नौ सर्वबंध घटित करना चाहिए। हमने जो उत्कृष्ट स्थिति बंध की प्ररूपणा देखी थी यानी अद्धा छेद वाली, उसमें जहां जिस मार्गणा में जिस कथन में जैसे एक केंद्रीय में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, हाँ तो मिथ्या तो प्रकृति या मोहिनी की एक सागर प्रमाण, तो वो उसके लिए सर्वबंध है, और उससे कम बंधेगी तो नौ सर्वबंध, एक समय भी कम बंधेगा तो भी वो नौ सर्वबंध होगा। ख्याल में थी बात? अभी हमने दो नंबर और तीन नंबर का अनुयोग देखा, अभी आगे के अनुयोग का नाम है उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बंध प्ररूपण, यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध, इसको नंबर चार और पांच देंगे। जो उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध है उसका यह निर्देश है, ओह और आदेश। ओह से ज्ञानावरणी के स्थितिबंध का क्या उत्कृष्ट बंध होता है या अनुत्कृष्ट बंध? तो कहते उत्कृष्ट बंध भी होता है और अनुत्कृष्ट बंध भी होता है, क्योंकि लगातार कुछ नहीं होगा ना, उत्कृष्ट भी कभी कभी बंधेगा कभी अनुत्कृष्ट भी बनता रहेगा। सबसे उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है इसलिए उत्कृष्ट बंध होता है, और उससे न्यून स्थिति को बांधता है इसलिए अनुत्कृष्ट बंध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषा सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंध की उत्कृष्ट बंध संज्ञा है, जैसे ज्ञानावरण का 30 कोणाकोणी सागर प्रमाण स्थिति बंध होने पर अंतिम निषेक की उत्कृष्ट स्थिति बंध संज्ञा है, और इससे न्यून स्थिति बंध होने पर वह अनुत्कृष्ट स्थिति बंध कहलाता है। शेष विचार सर्वबंध और नौ सर्वबंध के समान जानना चाहिए। सर्व में सभी लिए सभी कहे, कथन में उसको सभी कहा, और इसमें ऊपर का लास्ट वाला है उसको उत्कृष्ट कहा, उसमें भी वो सभी गर्भित ही होते जो उत्कृष्ट बंद कर रहे हैं, तो नीचे के निषेक बन ही रहे सब। कथन में डिफरेंस है, वहां तो जगन्नी की बात चल रही
नवे में का।
आप फिर से
नवे गुणस्थान में पहुंची हुए,
नवे गुण स्थान के लिए की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट बंध कब कहेंगे? पहले समय में, एक एक समय की बात नहीं करेंगे, अंतर्मुहूर्त तक की करेंगे। स्थिति बंध अपसरण अंतर्मुहूर्त में होता है, केवल नवे गुण स्थान के जीवों की चर्चा करेंगे तो उपशम श्रेणी में ज्यादा होगा, क्षेत्र श्रेणी में कम। उपशम श्रेणी में भी शुरुआत पहले अंतर्मुहूर्त में ज्यादा होगा, अंत तक कमती होता है ना। अब ऐसा क्यों
होता है? अंतर्मुहूर्त में उत्कृष्ट बंधी होता है और बाकी पीछे।
देखो हमेशा ही प्रथम स्टार्टिंग में तो बंध ज्यादा है, एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति बंधापसरण होता है, ऐसे हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होते चले जाते हैं। हजारों में तो संख्यात कोड़ा कोड़ी कहे थे उन्होंने, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी बार स्थितिबंध अपसरण होता रहता है, तो स्थितिबंध घटते चला जाएगा, क्योंकि गुणस्थान में ऊपर ऊपर चढ़ो, नौवा ही गुणस्थान है। स्टार्टिंग में विशुद्धिका में, फिर बढ़ते 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 अंत में मैक्सिमम। तो शुरुआत में स्थिति बंध ज्यादा होगा, नवे मात्र नवे गुणस्थान के लिए वो उत्कृष्ट कहलाएगा।
सूक्ष्म नेचुरली
जब हम जघन्य की बात करेंगे तो अंतिम समय में जघन्य होता है, पहले पहले हम उसको अजघन्य कहेंगे। यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात हो रही है, परंतु उतनी मार्गणा की, वो नवे गुणस्थान की बात नीचे चौथे गुणस्थान में कंपेयर मत करना। वो जिस मार्गणा की बात है, नवा गुणस्थान कोई अलग सी मार्गणा है ही नहीं है। हाँ, वहाँ आप ये अपगत वेद कह सकते हैं, वहाँ पर जो कुछ क्रोध वाले मान वाले आदि कह सकते हैं, परंतु क्रोध वाले कहेंगे तो वो क्रोध का अंतिम समय होगा। वहाँ आप समझने के लिए मात्र नवे गुणस्थान की बात पूछते तो अलग बात है, क्योंकि सामयिक छह अवस्थान कहेंगे तभी छठे से कहना पड़ेगा। सूक्ष्म संप्राय में ज्यादा क्लियर होगा, शुरुआत में बंद ज्यादा है अंत में कम है। अभी तो हमने उसकी बात पढ़ के आई ना, देखो हम यहाँ विशेषार्थ हमने पढ़ा था, फिर पढ़ते 31 पेज पर, सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंध की उत्कृष्ट बंध संज्ञा। जैसे ज्ञानावरण का 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध होने पर अंतिम निषेक की उत्कृष्ट स्थिति बंध संज्ञा, और इससे न्यून स्थिति बंध होने पर वह अनुत्कृष्ट स्थिति बंध है। यानी जहां कम स्थिति बांधी है वहां अंतिम वो निषेक की जो स्थिति है वो कितनी है, तो उत्कृष्ट नहीं है तो उसको ये अनुत्कृष्ट। शेष विचार सर्वबंध और नौ सर्वबंध के समान जानना चाहिए। आप कहेंगे जिस समय उत्कृष्ट बंध हुआ है उसी समय नीचे के निषेक को हम अनुत्कृष्ट कहेंगे ना, इसलिए अंतिम निषेक को यहाँ लेना है ख्याल में। अब जघन्य अजघन्य बंध प्ररूपना, ये नंबर 6 और 7, वहां उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट ने वो अनुत्कृष्ट कहा था, यहाँ जघन्य को कंसीडर करके जो जघन्य ने वो अजघन्य कहेंगे। हाँ, उत्कृष्ट भी अजघन्य में आ जाएगा। देखो जो जघन्य बंध और अजघन्य बंध है उसका यह निर्देश है ओघ और आदेश। ओघ में तो हम देखते हैं चपुक श्रेणी में जहाँ जो गठित होता है, और आयु कर्म का जघन्य वो तो मिथ्या तो गुणस्थान में होता है। ओग से ज्ञानावरणीय के स्थिति बंध का क्या जघन्य बंध होता है या अजघन्य बंध होता है, यानी कौन सा होता है? तो कहते हैं जघन्य बंध भी होता है और अजघन्य बंध भी होता है। जब तक जघन्य के पॉइंट तक नहीं पहुंचा है तो हम कहेंगे अजघन्य। तो अनादि से कौन सा बंध हो रहा है ज्ञानावरण में? अजघन्य। और उत्कृष्ट हो रहा है कि अनुत्कृष्ट हो रहा है? अनादि से। दोनों हो गए ना, कभी उत्कृष्ट हुआ कभी अनुत्कृष्ट हुआ, परंतु यानी उत्कृष्ट भी हुआ कभी अनुत्कृष्ट भी हुआ, अजघन्य तो हो ही रहा है, परंतु जघन्य एक ही बार होगा क्या? लौट कर फिर दोबारा होगा? क्यों नहीं होगा? क्षपक श्रेणी में जघन्य होता है, यानी उसमें अंतर भी घटित नहीं करें। अभी तो अपना विषय नहीं आया है उसका, देखो आगे बढ़ेंगे। जघन्य अजघन्य की 6 नंबर और 7 नंबर हमने डाला, 41 नंबर का पॉइंट। जो जघन्य बंध और अजघन्य बंध है उसका ये पूछा गया था कि जघन्य होता है कि अजघन्य, तो कहते हैं जघन्य बंध भी होता है और अजघन्य बंध भी होता है। ज्ञानावरण में क्या हो रहा है उसकी बात पूछी उन्होंने। सबसे जघन्य स्थिति को बांधने वाले के जघन्य बंध होता है। जघन्य स्थिति यानी अंतिम निषेक की स्थिति जघन्य है, ये देखना है। ये तो कहेंगे आबादा के ऊपर तो उसको जघन्य उसको नहीं कहेंगे, जघन्य स्थिति बंध उसी को कहेंगे। उस समय बंधने वाले समय प्रबद्ध का अंतिम निषेक उसकी स्थिति मिनिमम है, और इससे अधिक स्थिति को बांधने वाले के जघन्य बंध होता है। इसी प्रकार 7 कर्मों का कथन करना चाहिए। आयु को छोड़ा है, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नारकियों में आयु कर्म का अजगण्य स्थितिबंध होता है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तकों के सात कर्मों का अजगण्य बंध होता है। कितने ही आचार्य अपने अपने स्थितिबंध की अपेक्षा जगन्य बंध और अजगन्य बंध का कथन करते हैं, यानी अपनी अपनी मार्गणा में, अपनी अपनी अपेक्षा यानी अपनी अपनी आर्गना में जगन्य के अजगन्य उसकी चर्चा, उस मार्गणा के लिए जगन्य। यहाँ ओग की अपेक्षा नारकियों में आयु कर्म का जगन्य होगा ही नहीं, इस तरह से कथन। देव में भी नहीं होगा इस तरह से। फिर भी देवों में जो हम अंतर्मूर्त प्रमाण कहते हैं, अभी वो अंतर्मूर्त छोटा है वो बड़ा है वो बात छोड़ दो, क्षुल्लक भव नहीं है, फिर भी आयु का बंध अंतर्मूर्त प्रमाण देवों के हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंद्रिय की आयु बांधते उस अपेक्षा अंतर्मूर्त प्रमाण होगा, वैसा नारकियों में नहीं होगा, इतनी बात बता। इसलिए अकेले नारक की बात की, नारकी एक इंद्रिय का बंध नहीं करते, देव कर सकते हैं और मिनिमम आयु पर्याप्त ही का बंद करेंगे, वे अंतर्मूर्त प्रमाण आयु का बंद कर सकते हैं, ऐसा बंधन नारकी नहीं कर सकते, इतनी बात है। समझ में ना बात, संख्यात वर्ष प्रमाण तो बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, कितना ही लिया अंतर्मूर्त नारकी के लिए, अच्छा वो पर्याप्त जीवन की बात, एक मिनट, परंतु वो अंतर्मूर्त वो वाला नहीं होगा जो अन्य होगा, पर्याप्त क्या 24 पेज पर नरगति में नारकियों में आयु कर्म का जगन्य स्थिति बंध अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, और देवों में एक मिनट, यहाँ 25 पेज पर ज्योतिषी सौधर्म ईशान में वो एक इंद्रिय की बात की, वहाँ अंतर्मूर्त प्रमाण, वो अंतर्मूर्त का उन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। वो की अपेक्षा नारकियों में घटित किया, यानी उन्होंने उनमें वो लब्धि अपर्याप्त नहीं होता इसलिए नारकी में कहा। वो तो पर्याप्त का अंतर्मूर्त बड़ा है बहुत, उसी लिए कहा होगा, परंतु हाँ होगा ना,
यहाँ पे खाली नारकी की बात है, इसी तरह देव में भी,
और बाकी आचार्य तो अपने अपने स्थिति बंध की बात करते हैं, यानी देवों के लिए अपना जगन्य स्थिति बंध कौन सा होता है उसकी बात है, नारकियों के लिए अपना कितना, जो हमने मार्गणाओं में देखा था वो यहाँ घटित हो सकता है। अब आगे सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, यानी स्थितिबंध में ये सादी किसमें घटित करेंगे, स्थितिबंध में सादी क्या होता है, जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो सादि है क्या, अनादि है क्या, ध्रुव है क्या, अध्रुव है क्या, वैसे जो जगन्य स्थिति बंध है क्या वो सादि हो सकता है, क्या अनादि हो सकता है, क्या ध्रुव हो सकता है, क्या अध्रुव हो सकता है, उत्कृष्ट जगन्य पर लगा सकते हैं ना हम इसको, देखो हम पढ़ेंगे शायद यहाँ का, हमने कर्मकांड में जो पढ़ा है उसके आधार से मैं बोल रही हूँ। देखो जो सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है, सादी का अर्थ होता है जिसको शुरुआत है वो सादी है, जो जगन्य बंध जो है वो अनादि से था क्या तो नहीं था तो उसको स्टार्टिंग है तो सादी कहे, क्या वो अनादि है तो नहीं है, और जगन्य अनादि से है, जगन्य अनादि नहीं कहलाएगा, परंतु उत्कृष्ट है वो सादी भी हो सकता है, ऐसे उलट पुलट। अभी देखिए यहाँ क्या कहते, ध्रुव अध्रुव का इस किसको कहना, अभी जो ज्ञान आवरण आदि का जो है अनुत्कृष्ट वो ध्रुव बंद चल रहा है, या अजगण्य वो चल रहा है, अध्रुवण्य वो मिटने वाला है। जैसे जो अभव्य है उसको जो ज्ञान आवरण आदि का जो अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसके जघन्य कभी नहीं होने वाला, तो उसके अजघन्य है वो ध्रुव बंद कहलाए। पढ़ेंगे हम, मैंने दृष्टांत के तौर पर बताया। देखो जो सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है उसका यह निर्देश है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ से सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध, क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। तो कहते सादी है और अध्रुव है, क्योंकि जघन्य को सादी है आदि है, और फिर वो जघन्य हो तो रहने वाला नहीं हो तो अध्रुव है, इसलिए जघन्य को कह दिया है सादी और अध्रुव है। अजगण्य स्थिति बंध क्या तो शादी हुई ना उसके, पहले नहीं था वो हुआ, तो उत्कृष्ट शादी है कि नहीं है। हाँ पहले अनुत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट हुआ तो हम कहेंगे शादी है, उत्कृष्ट के बाद जब अनुत्कृष्ट होगा तब कहेंगे उसको शादी है। उत्कृष्ट भी शादी है अनुत्कृष्ट भी शादी है, क्या उत्कृष्ट लगातार चलता रहेगा, नहीं तो कहते अध्रुव है। क्या अनुत्कृष्ट लगातार चलेगा, नहीं बीच में उत्कृष्ट भी होगा तो वो भी अध्रुव है। जघन्य कैसा है, वो तो शादी है ही है, और बस वो तो अंतर्मूर्त तक जघन्य रहेगा, बाद में तो पूरा ही मिट जाएगा, बंध ही मिट जाएगा, तो कहते अध्रुव है। परंतु अजघन्य को उसमें नहीं लिया, जो कभी जघन्य ही नहीं हुआ उसको अजघन्य कहे, तो अनादि से अजघन्य चल रहा है। देखो अजघन्य स्थिति बंध क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। तो कहते सादी है अनादि है ध्रुव है अध्रुव है, किसको अजघन्य के लिए कहा बताते। अजघन्य स्थिति बंध सादी कैसे कह रहे, अनादि से हो रहा है ना, अपन उपशम श्रेणी में ऊपर चढ़ा ग्यारहवें में और फिर वापस लौट के आया, जघन्य तो हुआ ही नहीं था परंतु बंध नहीं था और शुरू हुआ, इसलिए सादी कहेंगे। अनादि तो चल ही रहे, अनादि से उसका ध्रुव है सॉरी अजघन्य तो अनादि से ही चल रहा था, अब ध्रुव बंध अजघन्य किसको कहेंगे, जो कभी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा है, जो कभी अभव्य को ले लेंगे, तो उसके लिए वो ध्रुव रूप से अजघन्य ही चलता है। और अध्रुव भव्यों के लिए वो जाके जघन्य होकर फिर मिटने वाला है, उसको अध्रुव कहेंगे। तो अजघन्य में चारों घटित होते हैं, तो सादी है अनादि है ध्रुव है और अध्रुव है, ये बात ख्याल में आ रही है। उत्कृष्ट में क्या लगाया था, सादी और अध्रुव। अनुत्कृष्ट में सादी और अध्रुव, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद जब अनुत्कृष्ट होता है तो उसकी आदि हुई ना, और वो कायम के लिए अनुत्कृष्ट नहीं रहेगा, फिर जाके वो उत्कृष्ट भी होगा, तो इसलिए अध्रुव। जघन्य को क्या कहा, सादी और अध्रुव, तो तीन के लिए सादी और अध्रुव का, और एकमात्र अजघन्य के लिए वो सादी भी है अनादि भी है ध्रुव भी है और अध्रुव। आयु कर्म के चारों ही सादी और अध्रुव होते हैं, कौन से चारों, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य। आयु कर्म का बंध ही सादी है और अध्रुव, क्यों, अरे अंतर्मूर्त के लिए होता है, भोग के पहले समय से तो नहीं हो रहा था, जब जाके कभी तो बंद होगा और अंतर्मूर्त ही होगा, बाद में मिटेगा, तो पहले नहीं हो रहा था अभी हो गया तो शादी कहेंगे, और कायम के लिए नहीं बंद होता है तो मिट जाता है अंतर्मूर्त में तो अध्रुव कहेंगे। तो आयु कर्म के चारों ही का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य, ये चारों। ये चारों ही کیا ہے؟ سادھیہ اور ادھروے. اسی پرکار اناہارک مارگنا تک شیش سب مارگناؤں میں سادھی ستھتی بندھ آدی اوگ سے سادھ کر جاننا چاہیے. یعنی جو ہم نے اوگ میں وچار کیا ہے ویسے ہی جہاں جس مارگنا میں ہوگی وہاں بات وہاں سمجھنی چاہیے, کیونکہ کتنی مارگنا ہی تو آدھی انت والی ہوتی ہے, سادھی شانت ہوتی ہے, تو اس میں اس کا ویسا بھی اس کا سادھی شانت کہیں گے. وشیشارتھ کرم کا جو بندھ رک کر پنہ ہوتا ہے وہ سادھی بندھ کہلاتا ہے, اور بندھ وچھتی کے پورو تک انادی کال سے جس کا بندھ ہوتا آ رہا ہے وہ انادی بندھ کہلاتا ہے. یہ تو بندھ ان جنرل کی بات ہے, پرکرتی بندھ کو بھی یہاں اپلائی کر سکتے ہیں. دھرو بندھ ابھویوں کے اور ادھرو بندھ بھویوں کے ہوتا ہے. یہ چاروں ہی اتکرشٹ انتکرشٹ جگنیہ اور اجگنیہ ان چار بھیدوں میں گھٹت کرنے پر سولہ پرکار کے ہوتے ہیں. یعنی اتکرشٹ ستھتی بندھ اس میں گھٹت کرنا ہے سادھی انادی دھرو ادھرو, تو ہم نے دیکھا تھا سادھی اور ادھرو ہوتا ہے اس میں. انتکرشٹ جگنیہ اور اجگنیہ ان سب میں لگانا ہے. آگے آٹھوں کرموں کا آشرے کر اسی وشے کا خلاصہ کرتے ہیں. پہلے میں پہلے پرکرتیوں میں یہ لگا سکتے ہیں, پرکرتی کا بندھ سادھی ہے کہ انادی ہے کہ دھرو ہے کہ ادھرو ہے. تو ہم کہتے ہیں انادی سے کرم بندھ رہا ہے تو انادی بندھ ہے, اپشم شنی کے چڑھ کر پھر اتنا تو بندھ رک گیا تھا تو سادھی بندھ ہے, اور پھر دھرو ہے ابھویوں کے لیے ادھرو ہے بھویوں کے لیے. یہ تو ان جنرل بات کی. اب یہاں اتکرشٹ آدھی پر گھٹت کر رہے سات کرموں میں, تو کہتے ہیں آگے آٹھوں کرموں کا آشرے کر اسی وشے کا خلاصہ کرتے ہیں. آیو میں تو ہمیشہ سادھی اور ادھرو ہی ہوگا, تو آیو کے بنا جاناورن آدھی سات کرموں کے اتکرشٹ انتکرشٹ ستھتی بندھ کاداچت ہوتے ہیں. کاداچت کا ارتھ ہوتے کبھی کبھی ہوتے ہیں. اتکرشٹ کبھی کبھی ہوگا, پھر انتکرشٹ ہوگا, پھر جا کے کبھی اتکرشٹ ہوگا, پھر انتکرشٹ ہوگا, تو یہ کاداچت کا کام سے. تتھا جگنیہ ستھتی بندھ کشپک شرینی میں ہوتا ہے, اس لیے تینوں سادھی اور ادھرو کے بیس سے دو دو پرکار کے ہوتے ہیں. منجو کون سے تین؟ برابر, اتکرشٹ انتکرشٹ اور اجگنیہ نہیں, یہاں لکھا نا اتکرشٹ انتکرشٹ تو کاداچت کا ہے اور جگنیہ تو کشپک شرینی میں ہی ہوتا ہے, اس لیے یہ تینوں. تینوں میں کس کو لیا؟ اتکرشٹ کو لیا, انتکرشٹ کو لیا اور جگنیہ کو لیا. وہ کیسے سادھی اور ادھرو کے بھید سے دو دو پرکار کے ہوتے ہیں, اس کا ارتھ خیال میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں تین بات؟ کنتو اس طرح اجگنیہ ستھتی بندھ کاداچت کا نہیں ہوتا. ان کے سمے کبھی کبھی اجگنیہ ہوگا, ایسا نہیں. جو جگنیہ نہیں ہے وہ سارا ہی اجگنیہ ہوگا. وہ اتکرشٹ ہوگا تو بھی اس کو اجگنیہ کہیں گے, انتکرشٹ ہوگا تو بھی اس کو اجگنیہ ہی کہیں گے. تو انادی سے ہو ہی رہا ہے نا, وہ کبھی اتکرشٹ کبھی انتکرشٹ, یعنی اجگنیہ اس کو نام دیں گے تو وہ تو انادی سے چلا رہا ہے. اس طرح اجگنیہ ستھتی بندھ کاداچت کا نہیں ہوتا, کیونکہ جگنیہ ستھتی بندھ کے پراپت ہونے کے پورو تک انادی کال سے جتنا بھی ستھتی بندھ ہوتا ہے وہ سب اجگنیہ کہلاتا ہے. تتھا اپشم شرینی میں उक्त सात कर्मों की बंध विच्छित्ति होने पर पुनः उसका उनका अजगण्य स्थिति बंध होने लगता है. इसलिए अजगण्य स्थिति बंध में सादि अनादि ध्रुव अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं. यहां सात कर्मों की क्यों कहा? वेदनी को क्यों? अच्छा स्थिति बंध की बात, स्थिति बंध की बात, बाद में बंद है परंतु स्थिति बंद नहीं है। ग्यारहवे में भेजने का
छोड़ के साथ लिएगा
नहीं,
देखा तो बंदो
आयु छोड़ कर, आयु में तो शादी और ध्रुव ही होता है, वेदनीय का बंद होता है पर स्थिति बंद नहीं होता, नहीं समझे? वेदनीय का जघन्य स्थिति बंद कहाँ कहा था? दसवें के अंदर में क्षपक में, उपशम के लास्ट में कितना हुआ? डबल, कितना? 24 मोर। ग्यारहवें में क्या हुआ? बंद हुआ, स्थितिबंध नहीं हुआ, प्रदेश प्रकृति बंद हुआ है, स्थितिबंध नहीं हुआ है, नहीं समझा? अभी भी
शपक श्रेणी में जगन्य होगा, वो
दसवें के अंत में अजगन्य हुआ, फिर मिट गया। नहीं, इनका अभी समाधान नहीं हुआ है,
समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि
ग्यारहवें में क्या हो रही है पोजीशन बताओ। क्या हो रहा है, स्थिति बंद है कि नहीं पहले कहो?
स्थिति बंद नहीं।
तो यहाँ बात किसकी चल रही है? स्थिति बंद की। स्थिति मत कहो, स्थिति तो सत्व भी होता है। तो ग्यारहवें में स्थिति बंद नहीं हो रहा था, वेदनीय का बंद है परंतु वो तो एक समय का है, वो तो उसको तो स्थिति बंद में नहीं गिनेंगे, उसको उसको प्रदेश और प्रकृति बंद में कंसीडर करेंगे।
अच्छा, वो जगन्य तो नहीं गिना है, वो जो ग्यारहवें गुण स्थान में जो स्थिति बंद होता है वो जगन्य स्थिति बंद
है। अरे वहाँ स्थिति ही बंद नहीं है तो जगन्य का सवाल क्या है? वहाँ स्थिति बनती ही नहीं है। नहीं नहीं, अभी ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में वेदनीय का बंद है, स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं है। हमने कितनी बार दी, जहाँ कषाय है वहाँ ही स्थिति अनुभाग बंद बनता है। तो दसवें में हो रहा है, ग्यारहवें में वेदनीय बंधेगा परंतु स्थिति बंद नहीं होगा, अपना प्रकरण स्थिति बंद का चल रहा है। यानी ग्यारहवें में वेदनीय का बंद है परंतु स्थिति बंद नहीं है, परंतु उसका स्थिति बंद नहीं है। क्योंकि स्थिति बंद उपशम श्रेणी के दसवें के अंत में 24 मूर्त का हुआ, ग्यारहवें में गया स्थिति बंद नहीं हुआ, वापस लौटा दसवें में आया तो स्थिति बंद हुआ, तो वहां दस ऊपर चढ़ते समय भी अंत में वो अजगण्य था क्योंकि 24 मूर्त का था, उतरते हुए भी वो 24 मूर्त जो कुछ यथायोग्य हुआ तो वो भी अजगण्य ही है, अजगण्य था, मिट गया फिर अजगण्य हुआ, तो अजगण्य के लिए आदि है। अनादि से अजगण्य था, मिट गया, वापिस शुरू हुआ, तो उसको साधी भी, अनादि तो था ही था, ये उपशम शनि चढ़कर उतरने वाले के साधी भी है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी में उक्त सात कर्मों की बंध विच्छित्ति होने पर, अब यहाँ बंध विच्छित्ति नाम देने से अपने गड़बड़ घोटाला हो रहा है ना, वेदनी की बंध विच्छित्ति नहीं हुई है, प्रकृति बंध की विच्छित्ति नहीं हुई है उसकी, अन्य की तो हो गई है, ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय वो बाकी सब है, तो नाम गोत्र सबके बंध विच्छित्ति हुई है। इनका बंध तो है परंतु कैसा बंध है? प्रकृति और प्रदेश बंध है वेदनीय का, साता वेदनीय का मात्र, परंतु वहां स्थिति बंद नहीं है, उस अपेक्षा यहाँ कह दिया, साथ को इकट्ठा ले लिया। तो साथ कहने से वो उसके अरे बंद तो होता है ना, ऐसे विचार हमारे ध्यान में आता है, इसलिए अजगण्य स्थिति बंद में सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते, कैसे बनते ख्याल में आई ना बात? आयु कर्म में उत्कृष्ट आदि चारों विकल्प साधी और अध्रुव दो ही प्रकार के होते हैं, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि आयु कर्म तो कभी कभी बनता है, तो जब बंधना शुरू हुआ तो साधी कहेंगे, तो कितना बनता है उत्कृष्ट के, अरे कुछ भी बंधने दो वो है तो साधी, और अंतर मुहूर्त में बंध मिटने वाला है तो उसको कहेंगे अध्रुव, क्योंकि आयु कर्म का सब जीवों के कादाचित का बंध होता है। कैसे? हाँ
आयु कर्म में शादी,
हाँ, शादी और अध्र दो ही,
और शादी कर्म आयु कर्म को छोड़कर बाकी सात कर्म में जो अचरण स्थिति बंध है उसमें
चारों है,
चारों में तो ऊपर जो
बाकी तीन में शादी और अध्र है,
हाँ बाकी तीन में
शादी। अभी प्रश्न क्या है? कौन सा ध्रुव ने कायम बनता रहे, जैसे ज्ञानावरण अनादि से बन रहे हो अभव्य जीव के तो बनती रहेंगे अनादि अनंत काल तक, वो ध्रुव बंध कहलाए। हाँ निरंतर है वो अंतर्मूर्त तक तो लगातार बन रहा है। फिर से
चारों आपको
आयु में चारों ही ले लो ना, अन्य में तो अजगन्य पर घटित होता है, आयु में तो चारों पर घटित होता है।
आयु में चारों,
आयु के उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट, जगन्य हो या अजगन्य, तो उसमें शादी और अध्रु है, वो बाकी शादी और अध्रु की बात चल रही है। आप बाकी ने मत घटाना। फिर से दोबारा प्रश्न करना, नहीं तो घोटाले हो रहे बहुत आपके। अन्य कर्मों में सादी अनादि ध्रुव अध्रुव ये चारों किस पर घटित करते हैं? अजगण्य। आप कहते हैं आयु में भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं, अजगण्य में नहीं, केवल सादी और अध्रुव ही लगेगा, वो कुछ भी हो अजगन्य हो जगन्य हो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, इसलिए उसकी उसकी एक साथ कंपेयर मत करना। आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है और अंतर्मूर्त में ही होता है, वो बाद में मिट जाता है, उसको बिगिनिंग है एंड है, तो वो सादी और अध्रुव है। अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गणा एक तो कादाचित नहीं है, क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन कब से कब तक है? तो अनादि से चला आ रहा है, और स्थिति बंध वालों के तो अचक्षु दर्शन होता ही होता है, तो बाद में अचक्षु दर्शन ग्यारहवें में भी है आप कहेंगे, तो वहां पर भी ये बात घटित होती है। तो कहते हैं ये मार्गणा कादाचित नहीं है, जो भव्य है वो तो भव्य ही है, जब तक स्थिति बंध चल रहा है तो भव्य ही है, और सबके तो अचक्षु दर्शन तो है ही। दूसरे ये क्रम से यानी अचक्षु दर्शन क्षीण मुह तक और भव्य मार्गणा अयोग केवली तक होने तक रहती है, इसलिए इनमें सादी आदि प्ररूपणा पूर्ववत बन जाती है, यानी योग ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा जो सादी बंध कहा है वो इनमें घटित होता है, ये कहने का उद्देश्य। क्योंकि चक्षु दर्शन कहेंगे तो अनादि से है सब जीवों को, या किसी एक जीव को अनादि से चक्षु दर्शन है, क्यों नहीं है? अरे जब चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय हुआ तभी था, इसलिए वो मार्गणा कैसी है? मार्गणा ही कादाचित, मार्गणा वो कायम रहने वाली नहीं, परंतु अचक्षु दर्शन वो एकेंद्रिय हो द्विंद्रिय हो पंचेंद्रिय कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो या बारहवें गुणस्थान वाला हो, अचक्षु दर्शन अनादि से वो बारहवें के अंदर तक चलता ही है, इसलिए उसमें जो ग्यारहवें में जाके लौटता है उसकी अपेक्षा ये जो हमने अजगण्य के चार भेद किए वो उसमें भी घटित हो सकते हैं और भव्य में भी घटित हो गए, इसलिए इनमें सादी आदि प्ररूपणा पूर्ववत बन जाती है, इसलिए इन मार्गणाओं में उक्त प्ररूपणा पूर्ववत करिए, जैसे हमने ओह में देखा वैसे ही अचक्षु दर्शन में और भव्य में भी घटित होगा। केवल भव्य मार्गणा में ध्रुव विकल्प नहीं होता, यानी ध्रुव किस में कहेंगे? अभव्यों में, भव्यों में अध्रुव कहेंगे। आयु तो किसी के लिए अध्रुव ध्रुव होती नहीं है, अन्य सात कर्मों की बात चल रही है, तो भव्य मार्गणा में ध्रुव विकल्प नहीं होता, कारण स्पष्ट है, क्योंकि भव्य जीव اس کا بند بھی میٹ کر مک جانے والے ہیں تو ہم کہیں گے ان میں یہ گروہ والا وکلپ نہیں ہوگا. شیش سب مارگناؤں میں یہ اتکرشٹ ستی بندھ آدی چاروں میں کون اتکرشٹ انتکرشٹ جگنیہ اور اجگنیہ یہ چاروں سادی اور ادھرو ہی پراپت ہوتے ہیں. کیا کہا؟ کیونکہ شیش مارگنا ہی ادھرو ہے, مارگنا چینج ہوتی رہتی ہے تو ان میں مارگنا ہی سادی ہے ادھرو ہے تو باقی ان کے ستی بندھ بھی ویسے ہو گئے. کیونکہ انیہ سب مارگنا یتھا سمبھو بدلتی رہتی ہے, گتیاں بدلتی رہتی ہے, کون سے اندریا والا وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ سب میں لگانا, یوگ بدلتے ہیں, وید بدلتے ہیں, سب مارگنا کانسٹنٹ کوئی نہیں رہے گا. یا سادھی ہے انیہ سب مارگنا یتھا سمبھو بدلتی رہتی ہے یا سادھی ہے, اس لیے ان میں انادی اور دھرو یہ وکلپ نہیں بنتے. यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रुव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि के अनादि और ध्रुव न होने से सादि और अध्रुव ये दो ही विकल्प घटित होते हैं. कहते जो अभव्य हो तो कायम के लिए अभव्य ही रहते हैं, हाँ भले रहते हैं परंतु उत्कृष्ट बंध तो हर समय नहीं होता, कभी कभी होता है. तो जब उत्कृष्ट नहीं हो रहा तो अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट के बाद समाप्त होकर उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट की शादी हुई. उत्कृष्ट के बाद जब अनुत्कृष्ट होने लगेगा तो अनुत्कृष्ट की शादी हुई, तो वो शादी और अध्रो के, हाँ हो गया ना. अभी स्वामित्व की बात आई, मैंने किसके होता है कहाँ होता है उसकी बात चलेगी. अभी अभी तक हमने ये 24 संयोग द्वार में से शादी अनादि ध्रुव ध्रुव की बात की, 8, 9, 10, 11. اور اس کے بعد یہ 12 والا جو نمبر 12 ہے کل دیکھیں گے یہاں سے. جاوانی کے گیان تے سوجھے لو کالو سوانی مستک نو سدا دیتوں.